प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाय में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, इनकी तलाश हम कहाँ कहाँ नहीं करते। मंदिरों में पूजा रखवाते हैं, पाठ करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, पर क्या हमें भगवान की प्राप्ति होती है? तो आइए बात करें कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। आपका स्वागत है सिस्टर तृप्ति। ओम शांति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, आप हमें आज क्या बताएंगी कि हम भगवान को कहाँ मिले, कैसे मिले और भगवान क्या है?
एक कहानी है। एक छोटा बच्चा कहता है अपनी माँ से, माँ, जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतने भगवानों को देखता हूँ और जब मैं किसी एक भगवान पर फोकस करने लगता हूँ तो बारी आती है दूसरे भगवान के दर्शन की, और इसमें क्या होता है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता, मेरा फोकस नहीं बैठ पाता और मैं भगवान से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता। और इसी से संबंधित एक और कहानी है। एक भाई थे, उनका बेटा बीमार था, सीरियस कंडीशन में था, हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके बेटे को अब भगवान ही बचा सकते हैं। तो क्या किया भाई ने, वे गए मंदिर में और पूजा पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके आराध्य देव थे कृष्ण भगवान और उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति शुरू कर दी। पूजा पाठ में लगे ही हुए थे, पूरे मन से लगे हुए थे, और ये बात जब तक कृष्ण तक पहुंचती है, उनके कानों में अपने भक्त की पुकार सुनाई देने लगती है, तो उतने में क्या होता है, इन भाई के एक संबंधी आ जाते हैं और वो कहते हैं, आपके बेटे को शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति मिलती है माता से, तो आपको पूजा करनी चाहिए, माता की, देवी की आराधना करनी चाहिए। तो भाई क्या करते हैं, अब वो देवी की आराधना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनकी आवाज देवी माँ तक पहुंचने ही लगती है। देवी माता यह सोचने लगती है कि मेरा भक्त क्या चाह रहा है। उतने में क्या होता है, कोई आता है और उनके भाई को कहता है, भाई आपके बेटे की कंडीशन बहुत सीरियस है, यह तो विघ्न है, विघ्न के संकेत हैं, और अगर विघ्नों को टालना हो तो विघ्न विनाशक की पूजा करनी चाहिए, गणेश की पूजा करनी चाहिए, वे ही विघ्नों को भगा सकते हैं। और ये भाई फिर गणेश की पूजा करना शुरू कर देते हैं, गणेश की उपासना शुरू कर देते हैं, और उतने में माता देखती है अब बच्चा गणेश को पुकार रहा है और माता फिर से बैठ जाती है। जब गणेश जी के कानों में अपने भक्त की पुकार सुनाई देने लगती है तो उतने में क्या होता है, भाई को कोई और कहता है कि ये गुरु हैं, एक बाबा हैं, जो अपनी भभूति से सब कुछ ठीक कर देते हैं और आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। तो उनका ध्यान फिर गणेश जी से भी हट जाता है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा, पुरातन काल से भगवान की खोज जारी है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में हम भगवान को कहीं ना कहीं तलाशते रहते हैं। भगवान के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पर आज भी अगर हम किसी से पूछें कि क्या आपको भगवान की प्राप्ति हुई है, क्या आपको भगवान मिला है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा हाँ मुझे भगवान मिल चुका है। कहते भी हैं भगवान अनंत है क्योंकि उसका अंत हमें नहीं मिल रहा है, पर जरूरत आज हम सभी को है भगवान के तलाश की।
तो सिस्टर, हम भगवान को जो इतना तलाश रहे हैं सब दूर, तो वो भगवान क्या है, उसका असली रूप क्या है?
हम कभी कहते हैं ईश्वर परब्रह्म है, कभी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह कण कण में बसा हुआ है, कभी हम कहते हैं ईश्वर निर्गुणवादी है, उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। तो कभी हम कहते हैं ईश्वर साकार है। देवी देवताएं, उनके चित्र, उनकी पूजा करते हैं और हम कहते हैं ईश्वर साकार है। कभी हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही ईश्वर है। तो हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं। तो इस प्रकार तरह तरह की मान्यताएं हैं उस ईश्वर के बारे में, उस भगवान के बारे में, उस परमपिता के बारे में। एक कहानी है पांच सूरदास की। वो गए एक सर्कस में हाथी को देखने के लिए। एक ने हाथी के पैर को पकड़ा और समझा हाथी एक खंबा है। एक ने हाथी की सूंड को पकड़ा और कहा हाथी एक सांप है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा और कहा हाथी एक सूप है। एक ने हाथी की पीठ को पकड़ा और कहा हाथी एक दीवार है। और एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और कहा हाथी एक रस्सी है। तो इस प्रकार से वो एक हाथी उन सभी नयनहीनों को अलग अलग रूप से दिखाई दिया। तो हम क्या कहेंगे? तो इला, हमने यह जो देखा कि उन सभी ने हाथी को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सभी सही थे? या आप कहेंगे उनमें से कोई एक सही था, या फिर आप कहेंगे कि वो सभी गलत थे?
मेरे हिसाब से तो वो सभी सही थे, क्योंकि वह वही बता रहे थे जो उन्होंने महसूस किया, तो उनके हिसाब से वो सत्य था।
तो जैसे कि आपने कहा, उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से वे सभी सही थे। पर अब सवाल यह उठता है कि जितने लोग उतने दृष्टिकोण। और आज अगर हम देखें तो लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, उनके दृष्टिकोण बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जितने लोग उतने पर्सपेक्टिव, उतने दृष्टिकोण और उतनी ही मतें, उतनी ही मान्यताएं भगवान के बारे में। क्योंकि भगवान या परमात्मा, वह जो है जैसा है, उसे कोई एक रूप में उसका अनुभव करता है, दूसरा उसका अनुभव किसी और रूप में करता है, तीसरा उसका अनुभव किसी और रूप में करता है, और जो उसे जिस रूप में देख लेता है या अनुभव कर लेता है, वह भगवान को उसी रूप में उसको फॉलो करने लगता है, उसे मानने लगता है। और अब हम देख रहे हैं कि इतनी मतें हो गई हैं, इतनी भिन्नताएं हो गई हैं, कि कहीं ना कहीं हम लॉस्ट हो जाते हैं कि आखिर भगवान है कौन।
तो सिस्टर तृप्ति, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं, तो हम कैसे समझें कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन भगवान है, कहाँ भगवान नहीं है, ये इसका अंतर हम कैसे करें?
तो हमने जैसे देखा इला, कितनी सारी मान्यताएं हैं, और हमें यह जानना है कि हम भगवान के असली रूप को कैसे जाने। तो अब हम इन मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, बिलीव्स की बात नहीं करेंगे, अब हम आपसे बात करेंगे कसौटी की, माना तराजू की, बैलेंस की। हमें क्या करना है? हमें कुछ पॉइंट्स को देखना है और उन पॉइंट्स को कसौटी पर देखना है कि कितने खरे उतरते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, उनको तराजू पर तोल कर ही हमें पता चलेगा कि भगवान है क्या। तो अब हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, भगवान जो भी होगा, ईश्वर जो भी होगा, वो सभी धर्मों को मान्य होगा। हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अलग, क्रिश्चियंस का अलग, यह हो नहीं सकता। भगवान सभी धर्म वालों के लिए एक ही होगा और सभी धर्म के लोग एक ही भगवान को मानेंगे। ईश्वर वह है जो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई और न हो। माना ईश्वर के माता पिता नहीं हो सकते, ईश्वर के गुरु टीचर नहीं हो सकते, क्योंकि वह सबका टीचर है, वह सबका गुरु है, वह ईश्वर या भगवान वही सभी का माता भी है, पिता भी है। उसका न कोई माता है, न पिता है, न गुरु है, न शिक्षक है जिसने उसे पालना दी है। और इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं, ईश्वर सर्वोपरि है। तो तीसरा पॉइंट है, ईश्वर सर्वोपरि है, माना वो सभी चक्रों से भिन्न है, किसी भी चक्र में आता नहीं है, चाहे वह जीवन मरण का चक्र हो, सुख दुख का चक्र हो, जन्म लेने का चक्र हो, वह इन चक्रों में आता नहीं है। और हम सब आत्माएं क्या होता है, हमारे जीवन में सुख भी है तो दुख भी है, हम जन्म भी लेते हैं और
मृत्यु भी होती है।
तो इस प्रकार से हमारे यह जो चक्र हैं उसमें भगवान नहीं आता, वह उनसे परे होता है। चौथा पॉइंट है, ईश्वर या भगवान वह सर्वज्ञ है, ऑल नॉलेजफुल है, उसे आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, त्रिनेत्री हैं, दिव्य चक्षु होते हैं उसके पास, त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है, वह त्रिमूर्ति है, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर है, वह गॉड है, माना जेनरेटर है, जी फॉर जेनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जी ओ डी गॉड, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। तो जी जेनरेटर अकेला गॉड नहीं है, ओ ऑपरेटर अकेला गॉड नहीं है, डी डिस्ट्रॉयर अकेला गॉड नहीं है, जी ओ डी गॉड, इन तीनों का रचयिता गॉड है, भगवान है। और पांचवा पॉइंट है, भगवान सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो जैसे आत्मा में सात गुण होते हैं, आत्मा गुण स्वरूप होती है, परम आत्मा गुणों का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति, इन सातों गुणों का वह सागर है। परमात्मा की महिमा में कहते भी हैं, अगर धरती को कागज बनाया जाए, सभी पेड़ों को कलम बनाया जाए और सागर की स्याही बनाई जाए और माता सरस्वती अगर परमात्मा के गुण लिखे, तब भी इसकी महिमा हो नहीं सकती, परमात्मा की महिमा अपरंपार है।
सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि गॉड वो है जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर भी है। तो वैसे तो गॉड को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, पर ये उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है।
बिल्कुल, जैसे कि मनुष्यों का पिता मनुष्य होता है, पक्षियों का पिता पक्षी होता है, जानवरों का पिता जानवर होता है, वैसे ही आत्माओं का पिता परम आत्मा होता है। और जो रूप आत्मा का होता है, उसी प्रकार का रूप परम आत्मा का भी होता है। आत्मा सोल पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा वह भी पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। भारत में इसकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है, ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग हैं, कर्तव्यवाचक हैं, गुणवाचक हैं। तो वह सुप्रीम सोल परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु है उसका नाम है शिव या सदाशिव। कहा भी जाता है शिव देवादिदेव है, कहते हैं ना देवादिदेव महादेव, माना देवों का भी देव महादेव। श्री रामचंद्र जब रावण से युद्ध करने निकल पड़े, वे जानते थे रावण के पास जो शक्ति है वह रावण ने शिव से पाई है, इसलिए रामेश्वरम में राम ने शिव की आराधना की, शिव की पूजा की और शिव से शक्तियां प्राप्त की, ताकि वह रावण के पास जो शिव की शक्तियां हैं, शिव के शक्ति के आधार पर वह रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सके।
रावण के पास शिव की शक्ति थी, इसीलिए राम जी ने भी शिव की आराधना की और शक्ति प्राप्त की ताकि वो रावण का संहार कर सके।
बिल्कुल। तो जैसे हिंदुओं में मान्यता है कि भगवान ज्योतिर्लिंग है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे इस्लाम में कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्राइस्ट ने क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, और गॉड कौन है? गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, पर उसने कहा गॉड इज लाइट। इसलिए चर्च में भी कैंडल जलाई जाती है, लाइट जलाई जाती है। गुरु नानक ने कहा एको ओमकार, माना उसने भी कहा गॉड इज लाइट। पारसियों का भी कहना है गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप है। बुद्धिज्म में भी माना जाता है भगवान ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इस प्रकार हम देखते हैं सभी धर्मों की मान्यता है कि गॉड लाइट है, ज्योति स्वरूप है। तो अगर हम देखें परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, अगर हमें उसका परिचय पाना हो, तो हमने देखा परिचय में हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मेरा पता यह है, मेरे गुण ये हैं, मेरा कर्तव्य यह है। तो गॉड परमात्मा का परिचय क्या हुआ? परमात्मा का नाम शिव है। परमात्मा का धाम एड्रेस परम धाम है। परमात्मा की क्वालिफिकेशंस गुण, वह सातों गुणों का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति, इनका सागर है। वह सर्वशक्तिमान है और उसका कर्तव्य क्या है? दुखों की दुनिया का परिवर्तन करके सुखों की दुनिया की रचना करना। तो हमने देखा आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, गुण स्वरूप है, और परमात्मा वह भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वह भी ज्योति स्वरूप है, पर वह गुणों का सागर है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के जोड़ को, आत्मा और परमात्मा के योग को ही राजयोग कहते हैं, इसे ही मेडिटेशन कहते हैं।
सिस्टर तृप्ति के साथ हमने आज परमात्मा के बारे में चर्चा की। सिस्टर तृप्ति ने हमें बताया कि गॉड की डेफिनेशन क्या है। गॉड है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम सभी आत्माएं गुण स्वरूप हैं और जो गुणों का सागर है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही हम राजयोग कहते हैं। हम आशा करते हैं कि इसी जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि गॉड क्या है, परमात्मा क्या है। गॉड वही है जो सर्वधर्म मान्य हो। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।
पहले मैं जब टीचिंग लाइन में आया तो उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं बहुत ही ज़्यादा बातूनी था, बहुत ही ज़्यादा बोलता था, बिना किसी टॉपिक पे भी बोलता था। उसके कारण स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और जो मेरे सहयोगी कॉलिग थे उनके बीच में तालमेल अच्छा नहीं था। जैसे कि वो लोग बैठे रहते थे और मैं साइड से भी निकलता था तो लोग बोलते थे कि आ गया सिर में दर्द। तब जब से मुझे बाबा का ज्ञान मिला, पिछले वर्ष ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला और मैं बाबा के ज्ञान में आया और मैं सेंटर जाना शुरू किया और मेडिटेशन करना शुरू किया, अमृत वेला शुरू किया, मुरली क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, तब से मेरे अंदर चेंजेज आना शुरू हो गया। अब मुझे गुस्सा बहुत ही कम आता है। स्टूडेंट्स मेरा आजकल बहुत ही सहयोग करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे सहयोगी भी आजकल मेरा बहुत ही सहयोग देते हैं।
जो अपने आप को भूल जाता है उसकी जीवन क्या होती है। तो आज भी संसार में मैं कौन भूलने के कारण, शरीर भान में आने के कारण, देह भान में आने के कारण इन पांच विकारों ने अशांति पैदा कर दी। अगर आप बॉडी कॉन्शियस यानी देह भान को छोड़ दो तो सेकंड में आप आत्मा अपने निजी शांत स्वरूप का अनुभव कर सके।
अनादि है शिव, अनंत है जीवन मधुबन, शिव वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव वसंत है। अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबिनी संतान हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचान है।
सत्यम शिवम
बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है,
मधुबन शिव वसंत है।